There's a nip in the air. Can you feel it? हरी पत्तेदार सब्जियों और सुपर फूड्स का टाइम आने वाला है. Shall we get started on these? Our episode 5 focuses on this and many more winter tips. So get ready.
Welcome to Sow and Reap, the Urban Gardening Podcast. This is India's first gardening podcast. We are three amateurs who are crazy about gardening beyond our day jobs.
I'm Chandana, codename Adenium.
I am Ashish, codename Syngonium.
I'm Pallavi, codename Carnation.
Feeling the nip in the air today morning made me realize how close we are to winter celebrations. It's Gandhi Jayanti already and Dashera is just around the fortnight. Wow! अभी तो गर्मियाँ आई थी और अब हम सर्दियों की तैयारी भी करने लगे. टाइम श्योर फ्लाइज. और देखिए कैसे बात करते करते हम अपने दूसरे सीजन के 5वें एपिसोड तक भी पहुँच गए हैं. इस बार हम ये भी जान के खुश हुए कि आप सब ने ऑलरेडी विंटर्स के प्लांट्स की तैयारी शुरू कर दी है. आपके इतने क्वेश्चंस और आपके कमेंट्स पढ़ के हमें ये पता चला. तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक सुपर फूड की जो हमारे फेस्टिव रिचुअल्स में भी यूज होता है. सोचिए सोचिए क्या है. आशीष आपको बताएंगे कैसे आप टमाटर उगा सकते हैं और विंटर्स में कैसे अपनी बालकनी से लाल लाल टमाटर तोड़ के मज़ेदार टोमेटो सूप का आनंद ले सकते हैं. जानकारी में इस बार पल्लवी हमें बताएंगी कि विंटर्स पौधों के लिए एक ज़रूरी सीजन क्यों है. पल्लवी विल ब्रिंग बैक साथी हाथ बढ़ाना सेक्शन विद अ टिप ऑन हाउ पीस कैन बी ग्रोन विद कैबेज और कॉलीफ्लावर्स. अराउंड अक्टूबर और नवंबर ऑल ओवर नॉर्दर्न इंडिया फील्ड्स आर प्रिपेयर्ड टू सो द नेक्स्ट बिग क्रॉप दैट इज वीट. एंड वीट इज सोन इन मोस्ट नॉर्थ इंडियन हाउस होल्ड इन स्मॉल पॉट्स एट होम टू सिग्नल द सोइंग सीजन एज पार्ट ऑफ द दशहरा सेलिब्रेशन रिचुअल्स. These are called jaw in Hindi and the young shoots of the green grass are placed on the right ear of elders in the family to seek their blessings. Ji haan, even before wheatgrass became popular in the West, it has been a part of our lives and our culture since centuries. So today I wanted to quickly share with you how to grow wheatgrass or jaw on your kitchen top or in your balcony. You may use it as jawstrings for your Dashera celebration or just take a bunch, juice it up and chug it as a superfood. What do you need? Good quality wheat seeds from a greenery or a seed shop. That is very important. Any repurposed plastic container or earthen pot that you may have. I even use my biryani pots for this. A soil mix of garden soil plus compost. That is all that you need. And a place where this can be kept under your nose for the next 15 days. Why? Because you don't want birds plucking the seeds out or you forgetting to water this in your busy schedule. बहुत ज़रूरी है कि आप इसे अपने सामने रखें जिससे चिड़िया आके आपके वीट के सीड्स चुग ना जाएं और आप इसे समय समय पर पानी देते रहें. To start, moisten the soil mix thoroughly. Just moisten by sprinkling water. Do not make it soaking wet. Now, put the wheat seeds. Ideally, you should soak them overnight. They work better for me, but you can use them as is. And put it on top of the soil. Now, take a fistful of vermicompost and sprinkle to cover the seeds completely. Not too deep, but just cover them. Spray some water and let it sit on your kitchen top or in your balcony in a shaded area. You should prefer to keep it at a place where direct sunlight does not hit it, but it receives some warmth and it's easy for you to sprinkle water on it every morning. मेरे लिए मेरी किचन सबसे अच्छी रहती है क्योंकि वो विंटर्स में भी कोजी रहती है और मैं रोज़ सुबह जाकर सबसे पहले अपनी तुलसी को पानी देती हूँ तो साथ के साथ मैं इस पॉट में भी पानी छिड़क सकती हूँ. इफ़ यू हैव अ लिड फॉर द कंटेनर और अ नेट बास्केट देन यू कैन पुट ऑन इट एंड इट क्रिएट्स एन एडिशनल ग्रीन हाउस इफेक्ट विच एड्स इन जर्मिनेशन. अब हर सुबह आप इसे चेक करें और अगर आपको ज़रा सा भी सूखा लगे तो इसके ऊपर पानी स्प्रिंकल कर दें। अगेन, डोंट पोर वाटर ऑन इट बट स्प्रिंकल वाटर ऑन इट टू कीप इट मॉइस्ट। मॉइस्चर और वार्मथ दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं फॉर द व्हीट सीड्स टू जर्मिनेट। इसीलिए हमने पहले वर्मी कॉम्पोस्ट की एक लेयर बनाई थी क्योंकि ये गर्म होती है। You should be able to see small bright green leaves coming out by the fifth day and the shoots growing rapidly after that. By the tenth day, they would be around 6 to 8 inches high. आप इसमें से कुछ तोड़कर अपने दशहरा पूजा के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप रेगुलरली वीट ग्रास पीना चाहते हैं तो आपको 15-20 दिन और रुकना पड़ेगा। From the 30th day, approximately, from the day you sowed the seeds, you can harvest it. मैं हमेशा दो कंटेनर्स में ग्रो करती हूँ जिनको मैंने 10 दिन के अंतराल पे शुरू किया है। This allows me to get a bunch of wheatgrass every week. अगर छोटे शूट्स हैं तो मैं थोड़े से काट के अपने सैंडविचेस में लगा लेती हूँ और अगर मेरे पास अच्छा बंच तैयार है तो मैं बंच लेकर उसे अच्छे से पानी से धोकर अपने जूसर में जूस करके वीट ग्रास का जूस पी लेती हूँ। तो अब आप भी शुरू करिए अपनी सुपर फूड जर्नी वीट या जौ के साथ और शेयर करिए अपने एक्सपीरियंसेस हमसे अगले एपिसोड में। विद दिस आई हैंड इट ओवर टू आशीष टू टेक यू थ्रू हिज फर्स्ट Know Your Plants or KYP section.
In the upcoming winters, do you want to have hot and yummy soup from homegrown vegetable in your garden? I'll talk about growing tomatoes in your balcony garden in KYP.
Tell me guys, किस किसने खेतों में से तोड़कर fresh फल और सब्जियां खाए हैं? What if वही आपके balcony garden या terrace garden में मिल जाए तो? Isn't that exciting? Hi, I am Ashish. आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जिसे कुछ लोग वेजिटेबल बोलते हैं और कुछ फ्रूट। It is soft and juicy. It is one of staples in Indian kitchen and part of almost every Indian meal. You can have it in form of hot and healthy soup. It is also eaten raw in salads and sandwiches because of its nutritional benefits. Yes, you guessed it right. We'll be talking about tomato in this KYP or Know Your Plants section. So, hum shuruaat karenge about how we can grow this fruit plant in our balcony or terrace garden. Tomatoes can be easily grown in home garden by procuring seeds. You just need to get good quality seeds which you can buy from seed shop or a nursery nearby. Agar beej na bhi available ho, to don't worry. Aap ek achhi quality ke tomato se bhi iska pautha bana sakte hain. You just need a small pot with holes in bottom for drainage. Pot can be 4 to 5 inches deep but wide enough to place seeds and germinate. Fill it with good quality potting mix which is roughly 60% of garden soil and 40% of vermicompost. Place your seeds evenly on the top layer of the soil mix. Here you can place thin slices of tomato or spread tomato pulp. Just ensure that स्लाइस ऑफ पल्प हैज एनफ सीड्स। सीड्स डालने के बाद उसके ऊपर सॉइल मिक्स की एक थिन लेयर डाल दीजिए। मॉइस्चराइज द सॉइल वेल यूजिंग अ स्प्रेयर। इंश्योर यू आर नॉट ओवर वेटिंग इट और मेकिंग द सॉइल सॉगी। कीप द पॉट इन अ पार्शियल शेड एंड व्हेन द सीड स्टार्ट जर्मिनेटिंग मूव द पॉट इन टू फुल सनलाइट। जर्मिनेशन विल यूजली टेक अराउंड लाइक 7 to 8 डेज। I'm sure new gardeners के लिए one of the happiest moments होगा when seed starts germinating. मेरे लिए तो पक्का था। Keep the soil evenly moist during the germinating phase. Within roughly 2 weeks, seedlings will grow up to 2 to 3 inches. After 4 weeks, when the seedlings are about 6 to 8 inches long, at that point you can transplant them in their final location. अब वक्त आ गया है इस seedling को बड़े pot में transplant करने का। इसके लिए आप एक लगभग 15 इंच डीप और 16 से 18 इंच वाइड पॉट ले सकते हैं। द बिगर द बेटर। फॉर द पॉटिंग मिक्स use well-drained, loosely packed soil with good amount of organic vermicompost, as tomato plants require fertile soil for good harvest. Like, you can again use 60% soil and 40% vermicompost. Just mix it well before use. अब ट्रॉवल और खुरपे की मदद से सीडलिंग को छोटे पॉट से बाहर निकाल लीजिए. Make sure you do not disturb the roots during the transplant process and keep the root ball intact to avoid any transplant shock. Now, for placing the plant in the bigger pot, dig a hole about like 6 to 8 inches deep in the new pot and plant the seedlings as deep as possible. So basically what happens is that the plant has the ability to sprout additional roots along the buried stem, which gives extra strength to the plant so that it can support more fruits. Now, what are the seedlings? Well, immediately after transplanting, for letting them settle well. Throughout the growing season, continue to water thoroughly when the top inch of the soil is dry. After transplanting, pot ko partial shade mein rakh dijiye for about 2 days to avoid the transplant shock, and after that gradually explore the plants to the sun. अब आप लोग यह सोच रहे होंगे, जब हमें बड़े पॉट में ही पौधा लगाना था तो हमने बीज छोटे पॉट में क्यों लगाए? राइट. उसके तीन कारण है. वन, नॉर्मली वन टोमेटो प्लांट इज ग्रोन इन वन पॉट. इफ द पॉट इज बिग, देन यू कैन ग्रो टू इन इट. अगर डायरेक्टली बड़े पॉट में बीज डालेंगे और जर्मिनेशन के बाद काफी सारे सीडलिंग्स निकल आए, देन पॉट विल नॉट बी एबल टू होल्ड ऑल द प्लांट. टू, टमाटर का पौधा बहुत डेलिकेट होता है एंड इट नीड्स स्ट्रॉन्ग रूट्स टू ग्रो एंड बेटर प्रोड्यूस. किसी भी पॉट में जब हम बीज लगाते हैं तो वी प्लेस द सीड्स ऑन द टॉप सॉइल एंड कवर इट विद लेयर ऑफ सॉइल और कंपोस्ट. आफ्टर जर्मिनेटिंग रूट्स विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द प्लांट, इसलिए हम उसे बड़े पॉट में 6 से 8 इंच डीप ट्रांसप्लांट करते हैं. थ्री, बड़े पॉट में बीज लगाने पर यू विल हैव टू वाटर इट मोर एज यू बिग पॉट विल नीड मोर वाटर, अदरवाइज टॉप लेयर ऑफ सॉइल विल स्टार्ट ड्राइंग एंड सीड्स विल नॉट जर्मिनेट. सो इट इज रिकमेंडेड टू जर्मिनेट सीड्स इन स्मॉल पॉट्स एंड देन ट्रांसप्लांट देम इनटू बिगर पॉट्स. मूविंग ऑन, सो अब जब हमारा पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वी नीड टू टेक केयर बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स नेसेसिटीज. Tomato plants are sunlight craving and need between 6 to 7 hours of direct sunlight in order to grow and root stronger and eventually produce fruit. So place them in sunniest possible place in your house. Water at least once a day to keep the top layer of the soil evenly moist so that it doesn't get weak. साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा पानी ना दे रहे हो, जिससे root rot का problem भी हो सकता है. Make sure you water the soil only एंड नॉट द फॉलिएज, यानी कि पत्तियां, अदरवाइज इससे प्लांट में कीड़े और फंगस भी लग सकता है. हर 2 से 3 हफ्ते में एड ऑर्गेनिक कंपोस्ट और गोबर की खाद टू द सॉइल, जिससे आपके प्लांट को एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा टू ग्रो लॉट ऑफ टोमेटोस. लगभग 6 से 8 हफ्तों में आप देखेंगे कि आपके प्लांट्स में पीले रंग के छोटे छोटे फूल आने लग जाएंगे. एज द प्लांट ग्रोज, यू मे हैव टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट. Take a long stick and dig it deep into the soil and loosely tie the stem with a stick. Tomato plant is very bushy when grown. Ensure your pot is placed at such a place where it gets enough space for the plant to grow. You may have to assist pollination manually due to the absence of external pollination agents inside houses. For that, simply shake the flowers gently to distribute the pollen grains. After 8 to 12 weeks, you will start seeing those flowers turning into fruits. Now comes the fun part. Within few weeks, your plants with super roots will delight you with a bountiful harvest of lovely fruit. अब वक्त है अपने प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का, क्योंकि as the plant gets heavier while it starts fruiting and fruits grow in size. So, जहां जहां पौधे की ब्रांचेस झुक रही हैं, उनको स्टिक के साथ बांधकर सपोर्ट दीजिए. To ensure high productivity, remove the suckers from the node of the main stem or leaf stem regularly. Pruning leads to bigger tomatoes with better quality. You will still have to wait for another few days for the fruit to ripe. And at this stage, I understand that it is generally difficult to wait, or hum sochte hain कब हम टमाटर को तोड़कर खा सकें। सो चेक द प्लांट डेली वंस दे बिगिन टू राइपन। फाइनली इट इज टाइम टू हार्वेस्ट वंस दे स्टार्ट डेवलपिंग देयर रेड कलर। टिपिकली टोमेटोज आर रेडी टू हार्वेस्ट विद इन 14 टू 16 वीक्स। राइप टोमेटोज कैन बी प्लक्ड बाय जेंटली पुलिंग एट द स्टेम विद योर फिंगर्स और स्निपिंग देम ऑफ देयर ब्रांचेस यूजिंग द शार्प सीजर्स। सो इफ यू स्टार्ट सोइंग योर टोमेटो सीड्स नाउ यू कैन रीप द बेनिफिट्स ऑफ होम ग्रोन फ्रेश एंड अनअडल्टरेटेड टोमेटोज ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड एंजॉय द यमी टोमेटो सूप। इवन दो ग्रोइंग एंड केयरिंग ऑफ टोमेटो प्लांट इज अ बिट ऑफ टीडियस जॉब, बट ये वही मेहनत का फल है जो हमेशा मीठा होता है।
The summer plants are slowing down while the winter plants are yet to start. So, what can we do in the garden in this month? Actually, a lot of things. Let me give you some ideas in this section. Hi, I'm Pallavi. Now, this is a month to clean and plan. I call it the transition month for your garden. आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि मौसम अभी बदलने लग गया है। कुछ दिन ठंड होती है, कुछ दिन गर्मी होती है। तो इस बदलते मौसम में आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। दिस मंथ इज़ अ स्लो मंथ। योर एग्जिस्टिंग प्लांट्स आर स्लोइंग डाउन एंड द न्यू वंस आर येट टू कम अप। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके गार्डन को आपकी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप अपने पुराने पौधों का ख्याल रखें और आने वाले पौधों को एक अच्छी शुरुआत दें। सो इन टर्म्स ऑफ हाउस कीपिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इज टू रिमूव द फॉलन लीव्स फ्रॉम प्लांट्स दैट आर डाइंग नाउ। यू विल स्टार्ट सीइंग दैट सम ऑफ योर प्लांट्स आर डेवलपिंग येलो लीव्स एंड लूजिंग देम इवेंचुअली। रादर देन लेट दोज लीव्स कलेक्ट इन योर पॉट, पिक इट अप एंड यूज इट एज अ कॉम्पोस्ट। इफ यू डोंट पिक अप द लीव्स एंड यू लेट देम डीकम्पोज इन द पॉट इटसेल्फ, इट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पेस्ट। The combination of low temperature and higher humidity can cause pests in your garden, so be sure to watch out for any changes in your plants. Some of the plants that are still flowering right now are rose, dahlias and fuchsias. And if you have perennials in your gardens, then those would also be doing well right now. If you had planted any summer vegetables, then those would be ending right now. So things like cucumber and corn, these are not going to produce any more vegetables right now. So take them out from your garden and use them for compost. तो अब आप जान चुके हैं कि आपके पास जो पौधे हैं आप उनके साथ अभी क्या कर सकते हैं और उनकी कैसे देखभाल कर सकते हैं। अब आगे की सोचते हैं। इंडिया में सर्दी का मौसम काफ़ी छोटा होता है। इवन इन नॉर्थ इंडिया इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग सीजन। सो इफ यू वॉन्ट टू ग्रो विंटर प्लांट्स यू रियली नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। Because it's a short season, you have to use the best soil. You have to give the best start to your winter plants. And the best soil combination for winters is a mix of fine soil, sand, and lots of compost. Do give your winter plants a lot of nutrition from the very start so that they grow quickly and they grow well. Let's talk about some of the vegetables and the flowers that you can grow during the winter season. So you can plan to grow radish. In fact, radish is a very, very good crop. It matures very quickly. So radish is a good crop to grow when you have very little time and you want to get a good produce. You can also plan to grow carrot. Carrot, being a root crop, requires really fine soil, which is why I told you to use fine soil for your winter plants. And it needs deep containers. So plan to have taller containers when you're growing carrots. Chandana has already talked about how she grows spinach and methi throughout the winters. You can go back to episode 3 and listen to that section. It's very easy and I'm sure it'll inspire you to plant spinach and methi for your family throughout this season. Tomato is one of the most recognized vegetables of winter. Some of the other vegetables that you can grow are different kinds of leafy vegetables or cruciferous vegetables or underground vegetables or legumes or herbs. So let me just give you a quick list of what you can grow in this season. And we'll talk about some of these vegetables in our upcoming episodes. So in cruciferous vegetables, you can grow cabbage, cauliflower and broccoli. I will talk about how growing cauliflower with peas actually help them to grow better. Now in leafy vegetables, I already said that you can grow spinach and methi. But if your family eats amaranth or lettuce, then you can grow that as well. In underground vegetable, we've talked about radish and carrot. You can also grow beetroot, turnip, onion and garlic. Very, very satisfying growing some of these vegetables at home. In legumes, you can grow green peas, beans and chickpea. In fact, mujhe yaad hai ki bachpan mein thele pe hare chane milte the. So if you grow chickpea at home, at least you and your family will be able to enjoy that experience that we used to have in the 90s. Winter is also a great time to grow herbs because they do quite well. But a lot of these herbs we don't eat so often. I'll still give you a list of what you can grow. You can grow basil, and I don't mean tulsi. This is the Thai basil or any other basil that you use in your cooking. You can also grow chives, fennel, which is soft, rosemary, thyme, parsley, and sage. Personally, I've only tried growing chives, fennel, rosemary, and parsley. These seem to be more multipurpose and you can use it for different kinds of cooking. So I feel that these herbs would be best suited for our cuisine. But the best part about winters are the flowers. Aap kahin bhi dekh lo, kisi ki bhi balcony mein dekh lo, kisi bhi garden mein dekh lo, har jagah aapko bas sundar sundar phool nazar aate hain. So definitely go out and bring some flowers in your garden. Whether you grow them from seed or you get the plant itself from the nursery, don't worry too much about it. At least add a little bit of color. And of course, when you have flowers growing in your balcony, then it'll attract butterflies and bees in the spring. So that'll help your vegetables and your other plants to grow better. Some of the flowers that you can grow are gazinias, dahlias, calendula, hollyhocks, alyssum, carnation, dianthus, larkspur, petunia, phlox, salvia, marigold and pansy. Ye to bahut hi choti list hai. I'm sure there are so many more depending on which part of India you live in. I now live in Chandigarh and I'm really looking forward to growing some narcissus. I don't know ki yahan ugega ki nahi ugega, but at least koshish to karni chahiye because I really love that flower. So there you have it. Like I said ki is mahine mein bahut zyada kuch karne ko nahi hai, but aap पुराने पौधों का ख्याल रख सकते हैं और आगे आने वाले पौधों की प्लानिंग कर सकते हैं. आप हमारा पिछला एपिसोड ज़रूर सुनिए जिसमें चंदना ने घर भर जाला एपिसोड में बताया था कि जब आप इतने सारे पौधे लेके आएंगे अपने घर पे, तो आप उनकी सेटिंग कैसे करेंगे जिससे कि हर पौधे को अच्छी धूप मिले और आप भी जहाँ भी बैठे हों आप अपने पौधों को देख सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं. सो डू लिसन टू गर्भजाला फ्रॉम एपिसोड 4 टू प्लान आउट योर बालकनी.
तेरी मेरी बागवानी में हम गार्डनर्स की रियल स्टोरीज लेकर आएंगे.
सो द अदर डे आई वॉज टॉकिंग टू अनदर एविड गार्डनर प्राची, एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग वेन शी मेंशन्ड दैट शी एक्चुअली हैज इंट्रोड्यूस्ड गार्डनिंग टू हर यंग चिल्ड्रन हु एक्चुअली लव गार्डनिंग. एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाउ इट्स इम्पोर्टेंट फॉर किड्स to know all about gardening, to have the feel of mud on their hands and understand plants and their significance in their life. So let's tune in and listen to what Prachi has to share with all of us.
Hi there, my name is Prachi, and the first plant that my children planted was, if I recall correctly, it was coriander. Why it is important to, expose your children to such activities is, I guess, witnessing something grow, something that you planted with your own bare hands, and is an amazing experience for a child. It also teaches you responsibility from caring for plants, understanding and learning about cause and effect. So, you don't water them, they will die, etc. And teaching them about why growing plants is important for the environment and they are the lungs of the earth. Lastly, I think to give them a sense of, plants do not grow in supermarkets.
Thank you, Prachi, for sharing these wonderful experiences of how you introduced gardening to your children and how you have seen gardening really help your children grow and learn. I think this also sets us up for a section or maybe an episode later where we would want to talk about why we should introduce gardening early in life, why it is a fun activity, and sometimes it also acts as a therapeutic activity for children who are shy around other people, and how it opens them up and makes them more comfortable with themselves and with others. So look forward to that in upcoming episodes.
Have you heard the term companion planting? It means growing two or more plants together that benefit each other. We'll tell you which plants you can grow together so that your effort is reduced. इसलिए हम इसे सिंपल शब्दों में कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना.
Have you ever tried growing cauliflowers and peas together? Actually, peas really help to improve the flavor and the crop of cauliflower. Let me tell you how in साथी हाथ बढ़ाना. Companion planting in your vegetable garden is actually a great way to increase the size of the crop you will have when it comes to harvest. The right combination of vegetables planted together gives you 5 benefits. First of all, it helps in pest control. It also helps you to attract beneficial insects. You can improve the soil nutrients by companion planting. The growth and the taste of both your crops will also be better. Some companion plants provide great ground cover and they also provide shade. So choosing 2 plants to grow together that complement each other will help you get a better outcome from your garden. Today I'm going to talk about cauliflower and peas, which is phool gobi and matar. Now, I don't know if you know this, but peas actually add nitrogen in the soil. And nitrogen is the element that is responsible for lush green plant growth. So whichever plant you are growing for its leaves, whether it's a flowering plant or it's a vegetable or a herb, whatever it is, if you grow that with any kind of legume, then you're going to get better growth out of the plant. So phool gobi aur band gobi, dono paudho ko bahut sara nitrogen chahiye. Kyunki dono paudho ki pattiyan actually hamare kaam ki hoti hain. Ab aap sochenge ki cauliflower matlab phool gobi mein hum pattiyan to khate nahi hain, hum actually uska phool khate hain. Let me tell you why nitrogen is important for cauliflower. If you have grown cauliflower at home, you will understand this better. तो आपने देखा होगा कि जब फूल गोभी उगती है तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो एक्चुअली फूल को कवर कर रही होती हैं। अगर आप उन पत्तियों को हटा देंगे तो वो फूल जो है वो थोड़ा फट जाएगा और उसका रंग भी थोड़ा पीला पीला सा हो जाएगा. सो टू मेक अ रियली गुड कॉलीफ्लावर फ्लोरेट यू नीड गुड लीव्स. इफ द कॉलीफ्लावर हैज लार्जर लीव्स देन इट इज कवर्स द फ्लोरेट फ्रॉम सनलाइट एंड दिस विल कीप द फ्लोरेट वाइट. Add more flavor to it and give it a nice compact look. So that's why you need nitrogen for cauliflower. For cabbage, which is the band gobi, we actually eat the leaves. So obviously when you need better quality cabbage, you need to give it more nitrogen. आप अगर अपने गमले के बारे में भी सोचेंगे तो आप देखेंगे कि cauliflower और cabbage दोनों काफी जगह लेते हैं. तो आप उनके साइड में मटर के पौधे लगा सकते हैं और मटर को वैसे भी सपोर्ट की जरूरत होती है. तो आप गमले के साइड में बैम्बू के स्टिक्स लगा सकते हैं जिसपे वो मटर चढ़ जाएगी और आपके गमले में जगह भी नहीं लेगी. सो गो अहेड एंड गिव दिस कॉम्बिनेशन अ ट्राई एंड सी इफ इट मेक्स अ डिफरेंस टू द यील्ड ऑफ योर कॉलीफ्लावर एंड कैबेज दिस सीजन. हैप्पी गार्डनिंग.
और इसके साथ हमारे पास बात करने का वक्त खत्म हो गया. ये अतरंगी एपिसोड आप तक लाने में हमें बहुत मजा आया. इस बार हमारे साथ कुछ और एंथुजियास्टिक गार्डनर्स भी जुड़ गए आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए. होप आपको उनकी टिप्स अच्छी लगी होंगी. मैंने तो अपने टमाटर के बीज पिछले हफ्ते ही डाल दिए थे, बट आशीष की ज़रूरी टिप्स मुझे आगे उनका ख्याल रखने में बहुत मदद करेंगी. और पल्लवी की जानकारी तो मुझे मेरे पौधों का विंटर्स में और भी ख्याल रखने के लिए बहुत ही अच्छी लगी. आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आपके लिए सबसे काम की कौन सी बात रही, हमें मैसेज या मेल करके ज़रूर बताएं. इफ़ यू वॉन्ट टू लिसन टू आर एपिसोड रेगुलरली देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट ऑन गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, एप्पल, गाना और जियो सावन. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम टू गेट रेगुलर अपडेट्स. Just search for Sow and Reap, the Urban Gardening Podcast. If you want to share a voice message or a picture with us, do send us a DM on Instagram. We will see you in 2 weeks. Happy gardening till then.